SBS हिंदी। ओम जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार अनिता जी।
ओम जी, आप एक जाने माने लेखक हैं, व्यंगकार हैं, तो जानने की बहुत उत्सुकता है कि कैसे शुरुआत हुई थी इस लेखन यात्रा की।
ये इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो असल में हुआ क्या
जी?
कि घर में पढ़ने लिखने का माहौल तो बहुत प्रारंभ से था ही। पिताजी मेरे टीचर थे, गांव के शिक्षक रहे, मगर इसके बावजूद भी उस समय शहर से कुछ अच्छी पत्रिकाएं जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स जैसा अखबार मंगवाते थे
जी।
तो इन अखबारों में कुछ कालम पढ़ने को मिलते रहते थे और इससे जो है एक पढ़ने लिखने का माहौल बना। और उसके बाद फिर यंग में तो मैं करीब 75 के बाद जब मेरी उम्र थी उस समय 20 साल
जी,
तब भारत में जयप्रकाश का जो आंदोलन उस समय चल रहा था उसके कारण मतलब जो पढ़ने लिखने वालों की बहुत जबरदस्त रुचि उनके लिटरेचर में और जो समग्र क्रांति वाला जो उधर माहौल बन रहा था संपूर्ण क्रांति का, तो लिखने पढ़ने का माहौल कुछ एक ऐसा बनने लगा कि जिसको कहना चाहिए स्पॉन्टेनियस और पावरफुल इमोशंस कुछ ऐसा बनने लगा कि कुछ टिप्पणियां डायरी में आने लगी और कुछ छुटपुट कविताएं और कुछ अखबार में कुछ पत्र के रूप में। उसके बाद फिर एक माहौल ऐसा बना कि दिमाग में फिर वो धीरे धीरे जब आदमी कुछ प्रोटेस्ट के लिए कुछ चीज लिखने लगता है तो व्यंग उसको पहले व्यंग का फॉर्म पहले उसको सूट करता है
जी।
कहानियों से व्यंग प्रतिवर्त की शुरुआत नहीं हो सकती, कहानियों से तो सिर्फ वस्तु स्थिति का चित्रण व्यक्ति कर सकता है। यूं कह ले कि वो उसमें खुद को इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जो व्यंग में कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, व्यंग में क्या होता है कि त्वरित जो रिस्पांस मिल जाता है या व्यक्त करने में लेखक आसानी महसूस करता है और प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है
जी।
इसलिए व्यंग आसान लगता है मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले को, प्रतिरोध करने वाले को।
बिल्कुल, क्योंकि एक साहित्य का दायित्व यही है कि सामाजिक स्थिति को उजागर किया जाए किसी भी भाव में, और व्यंग तो सीधा प्रहार करता है, ध्यान दिलाता है समस्याओं की तरफ। तो आज के दौर में ये व्यंग कितना सार्थक है?
देखिए, ये बहुत पहले से ही इस चीज पर एक विमर्श चल रहा है या
अच्छा।
विभिन्न विचारधाराएं लोगों की कि ऐसा मानते हैं लोग कि व्यंग कुछ कर सकता है, मगर वास्तु स्थिति ये है कि जो जिन परिस्थितियों या जिन चीजों को लेकर व्यंग किया जा रहा है वो कुछ समय के इस दौर में वो कुछ मापदंड में भी बदलाव आ गया है। जैसे पहले कोई किसी चीज पर प्रतिक्रिया होती थी मगर अब हम किन पर व्यंग करें, अब तो लोगों की कुछ चमड़ियां कुछ इतनी मोटी हो गई हैं कि छोटी मोटी बातों का तो असर ही नहीं होता क्या, मगर फिर भी व्यंगकार अपनी बात पहुंचाने की कोशिश तो करता है क्योंकि आज के इस दौर में जो पहले छोटी छोटी बातों को गलत माना जाता था जैसे भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार इतना आम मुद्दा हो गया है कि किसी छोटे मोटे स्तर का भ्रष्टाचार का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया, उसको शिष्टाचार में गिन लिया गया है लोगों ने। तो वहाँ व्यंगकार कई बार खुद को अपूर्ण महसूस करने लगता है
जी।
मगर इसका मतलब यह तो है नहीं कि वो अपना प्रयास बंद कर देगा।
जी बिल्कुल, और व्यंग किसी भी विधा के माध्यम से बाहर आ सकता है, चाहे मतलब उसका जो माध्यम है वो एक कार्टूनिस्ट भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, और व्यंग की आवश्यकता समाज के साथ में हमेशा ही जुड़ी रहेगी। और अगर आपके लेखन की बात करूं, लेखन के अंदर, लेखन से मेरा मतलब है कि अगर प्रोज की बात करूं जो आपके व्यंग लेख लिखे जाते हैं, उसमें से क्या कोई सटीक सा कोई अभी आप हमें सुना सकेंगे, छोटा सा कोई हो तो? जी,
व्यंग है मुर्गी या अंडा, कटआउट और झंडा।
अच्छा,
भारत एक त्योहारों का देश है, यकीन न हो तो आप कोई भी कैलेंडर उठाकर देख लें, हर दिन किसी न किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या कबीले का त्योहार या उसके किसी महापुरुष की जन्म या निर्वाण तिथि मिलेगी। उस दिन भी इनमें से कोई बड़ा त्योहार ही था, हर त्योहार की तरह उस दिन भी उमंग उल्लास देखते ही बनता था। सुबह के बाद थोड़ा समय सुखचैन से बीता ही था कि दोपहर तक उमंग और उत्साह उन्माद में बदलने लगा। आठ दस डीजे साउंड एवं उभरते नेताओं के आदमकद पोस्टरों से सजे संवरे वाहन शहर में घूमने लगे। देखते ही देखते शहर का कोना कोना कानफाड़ू संगीत के शोर शराबे में डूब गया। बीमार अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण करने लगे। कुछ लोगों की नजरों में घर में बोझ समझे जाने वाले वरिष्ठ नागरिक अपनी बेकाबू धड़कनों को थामने की नाकामयाब कोशिशें करने लगे। आखिर हिम्मत करके एक कबीर नुमा सज्जन ने चौराहे पर जाकर एक अति उत्साही कार्यकर्ता को समझाने यानी भैंस के आगे बीन बजाने का प्रयास करते हुए कहा कि भाई थोड़ा कम आवाज में बजाओ, इतनी तेज आवाज से बच्चे बूढ़े और बीमार सभी को तकलीफ होती है। पर धर्म प्रेमी सज्जन ने जवाब दिया, क्यों हमको तो मना कर रहे हो, पर जब उनके त्योहार पर वे जोर से बजाते तब उनको क्यों नहीं रोकते। जाहिर है कि कबीर निरुत्तर हो गए थे। कुछ दिन बाद दूसरे संप्रदाय का त्योहार आया, फिर वही कानफाड़ू डीजे साउंड शोर शराबा नारों से गूंजता और झंडियों से पटा शहर बदला था तो सिर्फ लोगों के दुपट्टों टोपियों और झंडियों का रंग। इस कबीर की भी फिर वही पीड़ा थी, इसने फिर वही जुरत की और जाहिर है कि फिर वही उत्तर पाया, क्यों हमको तो मना कर रहे हो पर कबीर का यह वंशज तब से अब तक अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहा है। तय नहीं हो पा रहा है कि यह घातक ध्वनि प्रदूषण आखिर किस धर्म मजहब या समुदाय के अनुयायी फैला रहे हैं, बच्चों बुजुर्गों और बीमारों की शांति पर डाका आखिर कौन डाल रहे हैं। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि कल वो चिल्ला रहे थे, कल वो इसलिए चिल्लाएंगे कि आज इन्होंने नाक में दम कर रखा है। सीधी सी बात तो यह है कि मुर्गी क्यों है, क्योंकि अंडा है, वही अंडा जो किसी मुर्गी ने ही दिया है। पहले किसे खत्म किया जाए ताकि दूसरा भी न रहे, यह चिंतन आज और भी प्रासंगिक हो गया है। मुर्गी पक्ष वाले और अंडा पक्ष वाले दोनों यह कब समझेंगे कि उदरस्थ तो दोनों को ही किया जा रहा है। इधर बापू की आत्मा लहूलुहान है, उधर हमारी शांति एक्सप्रेस बार बार छूटती जा रही है।
जी क्या बिल्कुल सामयिक विषय है, और किसने कब किया ये प्रश्न तो खड़ा ही रह जाता है। जो आज का कबीर है वो यही सोचेगा
कर रहा है कि कल उन्होंने किया था, और उन्होंने इसलिए किया कि उसके पहले उन्होंने किया था, जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, परेशानी उसको होती है।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूंगी।
मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ।
आपके विचार हमें बताएं, SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।